ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय द्रोण पुत्र को दंड, ये है शीर्षक। महाराज यू शुड बी गिविंग दिस क्लास। श्लोक संख्या 55। सूतः उवाच अर्जुनः सहसा आज्ञाय हरेः हार्दम् अथ असिना मणिम् जहार मूर्ध्न्यम् मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। सूत उवाच हरेर्हार्दम स्थासिना। यहाँ श्लोक प्रिंटिंग गलती है, इसमें पेन है, आसिना के बजाय थासिना है यहाँ श्लोक में। अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। सूत उवाच मणिं जहार मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्।
सहसाध्याय हरे हातनतासिनाम सह मूर्धज उवाच मणिजहार मूर्धन्यम् ब्रजस्य सह मूर्धजम् सुत उवाच
माताजी
सुत उवाच मणिजहार मूर्धन्यम्
उवाच सुत गोस्वामी ने कहा अर्जुन ने सहसा ठीक उसी समय आज्ञाय जानते हुए हरे है भगवान के हार्दम अभीष्ट अथ इस प्रकार असीना तलवार से मणिम मणि को जहार विलग कर दिया मूर्धन्यम सिर पर द्विजस्य द्विज के सह सहित मूर्धजम बालों के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद उसी समय अर्जुन भगवान की संदिग्ध आज्ञा का प्रयोजन समझ गए और इस तरह है उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है, अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा था, फिर भी उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निस्संदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। अनुवाद को दोहराइए। उसी समय अर्जुन भगवान की संदिग्ध आज्ञा का प्रयोजन समझ गए और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कारवार में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के उपलक्ष में आप सबके बीच में पुनः आने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और प्रातः सुबह भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए, ये देखकर भी बहुत आनंद है। कितनी अच्छी सेवा आप सबने की है इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन करके। कितनी बड़ी संख्या में कारवार के लोगों ने लाभ उठाया इस दिव्य उत्सव का, और आशा करते हैं कि इसी तरह यहाँ प्रचार और भी चलता रहे और आप सब एकजुट होकर मिलजुल कर भगवान श्री कृष्ण की और श्रील प्रभुपाद की सेवा करते रहें। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जी भी आए हैं। वैसे गोवा में वो कुछ उपचार के लिए आए थे और किसी न किसी तरह से यहाँ का संपर्क हुआ भक्तों के द्वारा और इस रथ यात्रा के उत्सव में यहाँ शामिल हुए हैं। हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे अन्यथा तो कारवार में उनका आना कैसे संभव होता, वो तो विश्व भर में प्रचार करते हैं और खास करके यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं और मध्य अमेरिका, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी भाग है उसमें खूब प्रचार करते हैं। आप सब तो क्रिकेट के बारे में जानते हैं कि वेस्ट इंडीज नाम का एक टीम है, जानते हैं ना, तो वहां उनका काफी प्रचार होता है। तो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतने दूर कारवार जैसे छोटी जगह में वो आएंगे, लेकिन दैव से भगवान की योजना से आज हमारे बीच में है। और वैसे उनको यहाँ बैठना चाहिए था प्रवचन देने के लिए, तो आज दोपहर को वो देंगे, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब दोपहर में भी अवश्य आइए और जो भक्त अभी नहीं आ पाए हैं उनको भी खबर पहुंचाइए कि महाराज जी आज दोपहर में प्रवचन देंगे। तो यहाँ प्रसंग ये चल रहा है श्रीमद् भागवत के सातवें अध्याय में कि अर्जुन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को दंड दे रहे हैं, दंड दे चुके हैं। बल्कि इसका संक्षिप्त में इतिहास इस प्रकार से है कुरुक्षेत्र का युद्ध प्राय समाप्त हो गया, दुर्योधन भी हार गया भीमसेन के साथ गदा युद्ध में, और ऐसे ही लेटा पड़ा था वहां रणभूमि के ऊपर। अश्वत्थामा को जब पता चला तो बहुत क्रोध आया, ये क्रोध उनके सहन शक्ति से बाहर हो गया और बदला लेने का विचार किया। तो कृतवर्म और कृपाचार्य इन दोनों से सलाह मशवरा विचार विमर्श करके जाके उन्होंने पांडवों के तंबू में जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे उनकी हत्या कर दी जबकि वो सो रहे थे। अब क्षत्रिय नियमों के अनुसार, उसूलों के अनुसार, एक क्षत्रिय को किस कभी भी आक्रमण ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नहीं करना चाहिए जो सोए हुए हों, जो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो, या जो डर के मारे उनसे दूर भाग रहे हों, या जो शरणागत हो गए हों, या जो पागल है, या ऐसे कोई परिस्थिति में एक क्षत्रिय को चाहिए कि वो सामने वाले को कभी मारे नहीं। पर तो और खास करके जब व्यक्ति सो रहा होता है और बिल्कुल अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सक्षम नहीं होता है अपनी रक्षा करने में, तो ऐसे अवस्था में मारना तो बहुत घोर पाप है। ये तो अश्वत्थामा ने ऐसे ही किया, बहुत जघन्य कार्य था ये, और कोई साधारण व्यक्ति चलो करता जो असभ्य था, असंस्कृत था तो माना जा सकता है, परंतु अश्वत्थामा तो एक ब्राह्मण के पुत्र थे, और कैसा ब्राह्मण, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, द्रोणाचार्य जो धनुर्वेद के गुरु थे सारे पांडवों को के लिए और कौरवों के लिए भी, तो ऐसे महान ब्राह्मण के पुत्र थे तो उनको पता होना चाहिए था कि ऐसे बिल्कुल उचित नहीं है, बहुत घोर पाप है ये। फिर भी कुछ ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई अश्वत्थामा की कि उन्होंने ऐसे कर दिया। जब करके भाग गए और सब ने देखा कि क्या हो गया है, तो द्रौपदी को बहुत दुख हुआ, द्रौपदी रोने लग गई जोर जोर से। अब आपको पता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में कितने लोग बच गए थे अंत में, आप में से कोई बता सकते हैं? हाँ, 3 लोग, पांडव तो बच गए थे ना, तो 5 हो गए, पांडव ही 5 हो गए। कृष्ण बचे कि नहीं? कृष्ण तो हमेशा बचे रहते, तो 6 हो गए। पांडवों की ओर से और कौन थे जो बचे? नहीं, द्रौपदी ने युद्ध में थोड़ी भाग लिया था। जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था, सात्यकी, अर्जुन ने उनको गदा युद्ध धनुर्वेद विद्या आदि सिखाया था, और युयुत्सु नाम के थे। युयुत्सु वास्तव में कौरव थे, परंतु युद्ध के प्रारंभ में जब युधिष्ठिर महाराज ने घोषणा की थी कि आप में से कोई यदि हमारे पक्ष में आना चाहे तो अभी भी समय है, आप धर्म के पक्ष में आके युद्ध कर सकते हैं, तब युयुत्सु एकमात्र थे जो कि कौरवों के पक्ष से पांडवों के पक्ष में आए, और कौरव होते हुए भी उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध किया। ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे परंतु गांधारी से नहीं, तो 101 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, 100 नहीं, 100 गांधारी से और 1 किसी दासी से, और 1 कन्या भी थी, पुत्री भी थी। तो खैर, तो 5 पांडव, फिर कृष्ण 6, फिर सात्यकी 7 और युयुत्सु 8, तो ये हो गए पांडवों की ओर से युद्ध करने वाले जो बच गए। और कौरवों की ओर से युद्ध करने वालों में से कौन बच गए? अश्वत्थामा बच गए, कृपाचार्य कृतवर्मा, तो ये तीन कौरवों के पक्ष से बचे हुए थे। तो अश्वत्थ, जब दुर्योधन की मृत्यु हो रही थी, वो भी पड़े हुए थे ऐसे ही, पराजित होकर जमीन पे पड़े थे, तो अभी मृत्यु होनी ही थी उनकी। उस समय ये जघन्य कार्य अश्वत्थामा ने किया था, और कृतवर्म और कृपाचार्य को भी साथ में उन्होंने विचार विमर्श करके ये सब किया। तो फिर भाग गए अश्वत्थामा, पता चला कि अब क्या होगा। अर्जुन आए, अर्जुन ने द्रौपदी को देखा और अपने देखा कि द्रौपदी के पांच पुत्रों की हत्या की है और अश्वत्थामा ने की है। अश्वत्थामा ने न केवल पांच पुत्रों की हत्या की द्रौपदी की, धृष्टद्युम्न इत्यादि जो कि द्रुपद के पुत्र थे, द्रौपदी के भाई थे, उनकी भी हत्या कर दी। ये सब लोग सो रहे थे और कई ऐसे थे, नींद में ही उनकी हत्या कर दी। तो जब अर्जुन वहां पहुंचे जहां की द्रौपदी रो रही थी, तो अर्जुन ने वचन लिया कि मैं उस अश्वत्थामा के सर को ले आऊंगा आपके सामने और सर आपके चरणों में रखूंगा, और तभी आप इसके सर पे पैर रखोगे तब आपका सब शांत हो जाएगा, तब तक मैं रहूंगा नहीं। तो क्षत्रिय लोग उस समय कभी कभी ऐसे वचन इस तरह से ले लिया करते थे। तो खैर, अर्जुन बहुत क्रोध से अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े, बहुत तेजी से अपने रथ से के ऊपर सवार होकर जा रहे थे। तो दूर से ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन इस तरह से क्रोधित होकर आ रहे हैं, अश्वत्थामा को बहुत भय लग गया, तो अश्वत्थामा भागने लगे। फिर भी तेजी से आगे बढ़ के अर्जुन ने गिरफ्तार कर लिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को मारा नहीं, लेकिन एक जानवर को जैसे बांधा जाता है ऐसे भागवत में वर्णन है, अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध लिया, बांध कर वापस ले आए। जब ले आए द्रौपदी के सामने, तो द्रौपदी ने देखा कि ये तो हमारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु पुत्र हैं, और जितना भी खराब जघन्य कार्य उन्होंने क्यों न किया हो, परंतु है वो हमारे गुरु के पुत्र, इसलिए इनकी हत्या करना उचित नहीं है। वो तो महान वैष्णवी भी हैं, बहुत महान भक्त हैं भगवान कृष्ण की, और महिला भी हैं, इसलिए उनका हृदय बहुत कोमल था। तो उनको सहन नहीं हुआ कि अश्वत्थामा की मृत्यु कर दी जाए। वैसे किसी माँ के लिए अपने बच्चों की हत्या देखना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है ये। तो द्रौपदी देवी को कितना कष्ट हुआ होगा उस समय जब उनके पांचों पुत्र मारे गए एक साथ, वो भी नींद में इस तरह से। फिर भी उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने निवेदन किया सबसे। उस समय सारे पांडव वहां इकट्ठे आ गए थे, कृष्ण भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे गुरु पुत्र हैं, तो उनको मारना ठीक नहीं है। जब द्रोण अश्वत्थामा को लाया गया, तो द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा, और उनको पता था कि अश्वत्थामा ने ही उनके पांच पुत्रों की हत्या की है, तो उन्होंने नमस्कार किया उनको, क्योंकि गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, नमस्कार किया। और उधर उन्होंने कहा कि देखो, ये कृपाचार्य द्रोणाचार्य की पत्नी जिनका नाम है कृपी, कृपी कृपा की बहन थी, कृपाचार्य की बहन कृपी, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, तो जिस तरह से मैं अभी रो रही हूं मेरे पांच पुत्रों के लिए, मैं नहीं चाहती हूं कि अश्वत्थामा की माता अभी इस तरह से रोए, इसलिए कृपया आप इसकी जान मत लीजिए, इसको जीवित रहने दीजिए, ऐसे द्रौपदी ने कहा। तो ये क्षमा करने की जो शक्ति है द्रौपदी में इतनी थी, ये बहुत विशेष बात है, केवल महान लोगों में ऐसी घटना हो सकती है। वैसे साधारण लोग भी ऐसे हम सुनने में आता है करते हैं। हम कई वर्ष पूर्व जब अमेरिका में थे तो एक ऐसे ईसाई दल है जो कि जिनका सिद्धांत ऐसा है कि वो लोग केवल खेत में रहते हैं और अहिंसा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए वो युद्ध नहीं करते हैं, किसी से ऊंचे स्वर में बोलते नहीं है, बहुत सी चीजें उनके जीवन में ये लोग पालन करते हैं। तो एक बार हुआ ये कि उनके पाठशाला में किसी उन्हीं उनके समाज के ही एक आदमी ने जाके सारे बच्चों को और उनकी जो अध्यापिका थी उनकी हत्या कर दी। तो ये सारे राष्ट्र में सारे विश्व में बहुत बड़ी खबर पहुंची, क्योंकि ये लोग बड़े शांति प्रिय होते हैं, तो इनके समाज में ऐसे कैसे हो गया। तो फिर बाद में जब मैं उस स्थान में गया था तो वहां के लोगों ने बताया कि जितने भी बच्चे थे जो मरे थे उनके माता पिता, क्योंकि वो भगवान के उपासक थे भले कुछ दूसरे धर्म में क्यों न हो, उन्होंने आके तय किया कि जिसने उनकी हत्या की है हम उनको क्षमा कर देंगे, क्योंकि उनके शास्त्र में क्षमा के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। हमारे प्रति कोई ऐसे गलत काम करे तो हमें हृदय में उस बात को रखना नहीं चाहिए। यदि उस बात को हम हृदय में रखेंगे हमारा हृदय जलता रहेगा और मन की शांति हमारी भंग हो जाएगी, आध्यात्मिक चेतना का विकास होने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो क्षमा और सहनशीलता ये दोनों का बहुत गहरा संबंध है, और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्षमा इस गुण का अनुशीलन करना बहुत जरूरी है। यदि हमें लगता भी है कि किसी ने हमारे प्रति कोई गलत काम किया है तो क्षमा कर देना चाहिए, हमें याद नहीं रखना चाहिए उस चीज को। देखिए वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की हत्या करने वाले के को क्षमा कर दिया, कितना घोर पाप है ये, कितना ठोस पहुंचा होगा उनके दिल को, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि हमारे शास्त्रों में हम क्या पढ़ते हैं, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, यदि भी हम बदला लेने का विचार रखेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर। तो उसी तरह से हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम भी इसी तरह से बाहर के दुनिया में जैसे लोग करते हैं हम भी ऐसे सोचेंगे, इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने साथ मेरे साथ ऐसे बोला, और हम इसी स्तर पे हमारी चेतना के निम्न स्तर पे ऐसे काम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर भक्ति में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालांकि ये मुश्किल है बहुत, फिर भी साधारण व्यक्तियों ने भी दुनिया में ऐसे करके दिखाया है, जैसे द्रौपदी ने किया इस समय, ये साधारण लोग भी करते, ऐसे कई उदाहरण हैं। एक संत हैं जिन्होंने कहा है बहुत सुंदर बातें, और ये अक्सर मैं दोहराया करता हूं इस बात को, उन्होंने कहा है कि ऐसे दो चीजें हैं जिनको हमें सदैव याद रखना चाहिए और दो चीजें ऐसे हैं जिनको हमें सदैव भूल जाना चाहिए। तो दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हमेशा हमें याद रखना चाहिए, एक जो दूसरों ने हमारे साथ अच्छा किया है उसको हमेशा याद रखना चाहिए, और हमने जो दूसरों के साथ बुरा किया है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो क्या दो चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, एक जो दूसरों ने हमारे साथ अच्छा किया है हमेशा याद रखना चाहिए, और दूसरी बात हमने जो दूसरों के प्रति कोई बुरा काम किया है वो भी याद रखना चाहिए, और दो चीजें जो हमको हमेशा भूल जानी चाहिए कौन से हैं, एक जो हमने दूसरों के प्रति कोई अच्छा काम किया है भूल जाना चाहिए, और दूसरों ने जो हमारे प्रति गलत काम किया है भूल जाना चाहिए। तो कौन से दो काम हैं जो भूल जाने चाहिए, हमने जो दूसरों के प्रति अच्छा काम किया भूल जाना चाहिए, और दूसरों ने हमारे प्रति जो बुरा काम किया है उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन आमतौर से होता क्या है, उल्टा होता है। जिस चीज को याद रखना चाहिए भूल जाते हैं, जिस चीज को भूल जाना चाहिए याद रखते हैं। किसी ने हमारे प्रति बुरा किया तो जीवन भर भूलते नहीं है, 20 साल बाद भी मिलेंगे उस आदमी को, तुमने मेरे साथ ऐसे किया था, 20 साल पहले तुमने मेरे बारे में ऐसे कहा था, ये याद रखते हैं। और जो हमने उनके साथ 20 साल पहले कुछ छोटा कुछ किया होगा वो भी उसको याद दिलाते, याद है ना तुम्हारे लिए इतना मैंने किया था। तो जिन चीजों को हमें भूलना चाहिए अच्छी तरह से याद रखते हैं, और जिन चीजों को भूलना चाहिए याद रखना चाहिए उसको भूलते हैं। जब दूसरों ने अच्छा किया उसको जल्दी से भूल जाते हैं, जो हमने जो गलत किया उसको भी जल्दी से भूल जाते हैं। परंतु हमें सोचना चाहिए कि हमारे मनुष्य समाज में और खास करके भक्तों के समाज में ऐसे सब गुणों का अनुशीलन करना कितना महत्वपूर्ण है, नहीं तो मनुष्य समाज में और भक्त समाज में प्रेम आदि कैसे बना रहेगा। एक दूसरे के पीछे पड़े रहेंगे तो कोई अंत ही नहीं है। ऐसे अंग्रेजी में कहावत है, एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ, मतलब किसी ने हमारे आंख को मार दिया हम उसके आंख को मारेंगे, किसने हमें एक आंख में अंधा कर दिया उसके हम एक आंख अंधा कर देंगे, मतलब बदला लेना है। लेकिन यहाँ पे भारत के ही एक किसी नेता ने कहा था 50-100 साल पहले कि ऐसे आंख के लिए आंख का सिद्धांत हम स्वीकार करेंगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, होगा ना, एक दूसरे के ऊपर बदला लेते लेते क्या होगा, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो ये जो तमोगुण और रजोगुण के विचार हैं उनको मन में नहीं लेना चाहिए। जितना हम बदला लेने का और सब ऐसे विचार मन में रखते हैं, सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है, हमें ही होता है। जिसके प्रति हमारे मन में गलत विचार है उसको बेचारे को पता ही नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं, वो खुशी से अपना जीवन बिता रहा है, वो हम तड़प रहे हैं, उसने ऐसे कहा उसने ऐसे किया, इस तरह से हमारा जीवन बिल्कुल कष्टों से भर जाता है। तो क्षमा करना बहुत महत्वपूर्ण है, और कलयुग में खास करके, क्योंकि कलयुग ये कलह का युग है, कलह अर्थात झगड़ा। इस कलयुग में देखा जाता है मुख्य लक्षण क्या है, बहुत झगड़े होते हैं लोगों के बीच में, छोटी छोटी कारणों से भी झगड़े होते हैं, कभी कभी कोई कारण न होते हुए भी झगड़े होते हैं, है ना, बिना वजह झगड़े करते हैं लोग, झगड़ा करना पसंद करते हैं। शायद ऐसे कोई भी लोगों को जानते होंगे आप, झगड़ा किए बिना भोजन पचता नहीं है, कुछ ना कुछ झगड़ा करना है किसी के साथ में तो करना है, कोई झगड़ा करते फिर मन शांत हो गया फिर बैठ के भोजन शांति से ले सकते हैं, है ना। यह है कलयुग, क्या करें। तो हमें कलह में कोई रुचि नहीं रखनी चाहिए, हमारी चेतना को हमें ऊपर बढ़ाना चाहिए, ऊपर उठा के सोचना चाहिए कि हमारा जीवन का ध्येय क्या है। हमारा जीवन का ध्येय है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कितना ऊंचा लक्ष्य है ये। और हम यदि संसार के छोटे मोटे चीजों में ये वो करते रहेंगे, इसी में उलझ जाएंगे तो कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। आज देख रहे हैं कलयुग में लोगों के बीच में संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्षमा नहीं है भावना। थोड़ा कुछ हो जाता है गलत, इतना गुस्सा हो जाते हैं लोग, इतना द्वेष मन में उत्पन्न हो जाता है, संबंध खराब हो जाता है, इसलिए इतने सारे तलाक वगैरह सब हो रहे हैं ना, शादी करते हैं जल्दी से तलाक पे छोड़ देते हैं, कुछ थोड़ा कुछ हो गया बस गर्मा गर्मी में खत्म सब कर देते हैं। अभी आसान रास्ता है आजकल, तलाक कर दो, है ना, ऐसा नहीं है कि पुराने जो शादियां थी उनमें पति पत्नी के बीच में कोई झगड़े नहीं होते थे, होते रहते। गृहस्थ आश्रम मतलब होना ही है, कुछ न कुछ तो होना है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई मतभेद हो गया तो चलो तलाक, तो चलो नहीं, थोड़ा सहनशीलता होना चाहिए, थोड़ा परस्पर आपस में समझदारी होनी चाहिए, थोड़ी क्षमा भावना होनी चाहिए, समझना चाहिए कि केवल ये मेरे बस की, मेरे अहंकार और मेरे सुविधा की बात नहीं है। हम कोई जब शादी करते हैं तो फिर बच्चे हैं, समाज है, परिवार है, भगवान है, शास्त्र है, इन सब का सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल अपने बारे में हम सोचें। तो आजकल कलयुग में लोगों का हृदय बहुत संकुचित हो गया है, छोटा हो गया है दिल, इसलिए केवल अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य समाज के प्रति क्या है, हमने विवाह किया है या कोई हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो भी संबंध हो, हमारी जिम्मेदारी भगवान के प्रति है, सारे समाज के प्रति भी है। इसलिए बहुत सावधानी से हमारे संबंधों का को संभाल के रखना चाहिए हमें। इसके लिए सहनशीलता, क्षमा आदि ऐसे गुणों का होना बहुत आवश्यक है। तो द्रौपदी देवी यहां सिखला रही है कि कैसे क्षमा करना चाहिए, हालांकि ये बहुत मुश्किल है। एक बच्चा ने, 5 बच्चे उनके एक साथ में सोते हुए अवस्था में मारे गए, फिर भी देखिए कैसे द्रौपदी ने क्षमा कर दी। तो द्रौपदी ने जब ऐसे कहा तो जो अन्य लोग वहां उपस्थित थे, नकुल, सहदेव, अर्जुन भी मान गए, श्री कृष्ण भी मान गए, उनका ठीक है, द्रौपदी जो कह रही है सही बात, लेकिन भीमसेन ने नहीं माना। इसने इतना दुष्ट काम किया है, इसकी हत्या होनी ही चाहिए। और ये ब्राह्मण है? नहीं, ब्राह्मण केवल जन्म से है, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण केवल जन्म से नहीं होता है ना, गुण से होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं कि जो 4 वर्ण बनाए हैं ना, जिनमें से ब्राह्मण है, ये केवल जन्म की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है वो अपने आप ब्राह्मण बन गया, ऐसा नहीं होता। जैसे कि प्रभुपाद जी समझाते हैं, किसी डॉक्टर के घर में जो बच्चा जन्म लेता है तो अब जन्म से डॉक्टर बन जाता है? नहीं, उसको योग्यता प्राप्त करनी होती है। जब वो स्कूल कॉलेज पास करेगा, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाएगा, फिर जाके वो डॉक्टर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का पुत्र है इसलिए अपने आप डॉक्टर बन गया। तो ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण का पुत्र है तो अपने आप ब्राह्मण बन गया, ऐसा नहीं। गुण से भी ब्राह्मण होने चाहिए, लक्षण होने चाहिए ब्राह्मण, जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते हैं परंतु ब्राह्मणों के गुण नहीं है उनमें, उनको ब्राह्मण नहीं कहते, उनको ब्रह्म बंधु कहते। तो यहां सब लोग कह रहे थे कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रह्म बंधु है। ब्राह्मण के लक्षण इसमें नहीं दिखाई देते क्योंकि इतना बुरा काम इसने किया जो किसी भी सभ्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण वो होता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है, परम सत्य को जानता है, वो सच्चा ब्राह्मण होता है। तो ऐसे परम सत्य को जानने वाले ब्राह्मण कभी ऐसे कार्य कर सकता है? नहीं। और इसने किया है, इसका मतलब है कि ये ब्राह्मण सही नहीं है, तो ब्रह्म बंधु। और ब्राह्मण को नम्र भी होना चाहिए। जब सुदामा द्वारका गए थे ना, सुदामा का नाम तो आप सबने सुना है, भगवान श्री कृष्ण के कितने घनिष्ठ मित्र थे वो और भक्त भी थे। तो सुदामा जब गए द्वारका में तो कितने प्रेम से स्वागत किया श्री कृष्ण ने उनका, कितना सम्मान दिया, अपने बिस्तर पर बिठाया, सुदामा के चरणों को धोए, मालिश किया, सुदामा की आरती उतारी और उनकी सहायता ये सब कार्यों में रुक्मिणी देवी भी कर रही थी। और फिर उनसे छीन के उनका जो पोहा था वो भी छीन लिया और मुंह में डाल दिया। तो इतना सब किया श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ, और सुदामा को विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन जब वो वापस जा रहे थे, द्वारका छोड़ के अपने गांव में जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण के ऐसे बहुत ही प्रेममय बर्ताव को याद कर रहे थे कि किस तरह से भगवान ने मुझे आलिंगन किया। और फिर वो श्लोक बोलने लगे, वाहम दरिद्र पापी यान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुर इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। मन ही मन में वो सोच रहे थे कि कहाँ मैं एक पापी व्यक्ति, क्व अहम मैं कहाँ दरिद्र, एक बहुत गरीब व्यक्ति, पापी यान बहुत पापी व्यक्ति, ब्रह्म बंधु मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, केवल जन्म मैंने लिया है ब्राह्मण परिवार में, परंतु ब्राह्मण नहीं है। सुदामा ब्राह्मण थे, गुण से भी थे, परंतु नम्रता के कारण वो ऐसे अपने आप को ब्रह्म बंधु सोच रहे। सच्चा ब्राह्मण वो होता है जो नम्र होता है। अभी हमारे ब्राह्मण होने का या विद्वान होने का या भक्त होने का इत्यादि हमें गर्व होता है, घमंड होता है, तो फिर हम सच्चे भक्त या सच्चे ब्राह्मण, सच्चे विद्वान नहीं होते। तो फिर वो सोचने लगे, कहाँ मैं एक गरीब पापी ब्रह्म बंधु, और कहाँ को कृष्ण, कहाँ कृष्ण श्री निकेतन लक्ष्मी देवी के पति हैं, शरैश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण कहाँ और मैं कहाँ। फिर भी वो श्री कृष्ण ने क्या किया, बाहुभ्याम परिरंभितः, अपने भुजाओं से मुझे आलिंगन किया। तो श्री कृष्ण के कितने गुण हैं, अच्छे महान गुण हैं। तो सुदामा अपने आप को ब्रह्म बंधु मान रहे, हालांकि कभी वो ब्रह्म बंधु नहीं थे। ब्रह्म बंधु वो होते हैं जिनके ब्राह्मण के गुण नहीं, परंतु सुदामा तो महान वैष्णव है, ब्राह्मणों से भी परे हैं। तो खैर, जब भीमसेन ने ऐसे कहा, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड के बारे में भी काफी चर्चा आजकल चल रही है, पूरे विश्व भर में चल रही है। कई देशों में मृत्यु दंड को उन्होंने मतलब अब मना कर दिया कि अभी मृत्यु दंड हम नहीं देंगे, उनके कानून से ही मृत्यु दंड निकाल दिया गया है। और इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि हमारी न्याय प्रणाली में कभी कभी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि यदि गलत आदमी को मृत्यु दंड दे दिया तो फिर क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते ना। यदि गलत आदमी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और बाद में पता चला कि इसने नहीं किया था वो गुनाह, तो उसको छोड़ तो सकते हैं ना। एक बार मृत्यु दंड दे दिया, क्या कर सकते हैं, मर गया बेचारा, अभी कुछ नहीं हो सकता, तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। और आजकल कलयुग में ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है कि सही क्या, गलत क्या समझना। कभी आपने देखा होगा दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कभी कभी खास करके पति पत्नी के बीच में होता है ना, कौन दोनों को अपनी बात इतनी सही लगती है, कौन दोनों अपना अपना बात बताते हैं, ये भी ठीक हो गया वो भी ठीक हो गया, ऐसे लगता है सही क्या है, सत्य क्या है, समझना मुश्किल हो जाता है। कलयुग में बहुत मुश्किल है समझना, ये सब लोग अपने अपने तरफ से ही बात करते हैं, अपनी गलतियां नहीं बोलते, दूसरों की गलती बोलते, अपनी गलती नहीं बोलते, तो सही क्या है नहीं है बहुत मुश्किल। न्याय का निर्धारण करना बहुत मुश्किल इस कलयुग में। लेकिन फिर भी शास्त्रों के आधार पर जो ऐसे है कि मृत्यु दंड जब जो वास्तव में गुनहगार है ऐसे खून करता है, ऐसे कार्यों के लिए मृत्यु दंड अच्छा है। प्रभुपाद जी पूर्ण शास्त्रों में बताते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह के विभिन्न कार्य करता है, दूसरों की हत्या करता है, उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। क्योंकि मृत्यु दंड मिलने से क्या होगा, ये राजा की कृपा है उसके ऊपर। जब खूनी को मृत्यु दंड मिलता है तो अगले जन्म में नरक जाने से वो बच जाता है, और जो भी उसने पाप किया है वो मृत्यु के रूप में उस पाप से मुक्त हो जाता है जब उसको मृत्यु दंड मिलती है। इसलिए राजा की कृपा ये उस खूनी के ऊपर भी है, और यदि राजा ऐसे नहीं करता तो उसका बोझ राजा को अपने सर पे लेना पड़ता। तो कभी कभी झूठे करुणा के नाम पे नेता लोग भी अपने सर पे बहुत कुछ ले लेते हैं। तो खैर, मृत्यु दंड शास्त्र में हमारे है और इसके पीछे ये कारण है, मृत्यु दंड नहीं देंगे, ऐसे ही उसको जेल में डाल देंगे तो क्या होगा? इस जेल में तो बेचारा जीवन भर जेल में रहेगा, और जब मृत्यु हो जाएगी फिर भी नरक में जाएगा, फिर भी उसको दंड मिलेगा। लेकिन मृत्यु दंड उसी समय मिल गया तो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। और कहीं ऐसे भी बताया गया है कि मृत्यु दंड के कारण हो सकता है वो स्वर्ग लोग भी पहुंच जाए, ऐसे भी होता है। परंतु आजकल न्याय प्रणाली कुछ बहुत जटिल होने के कारण, कलयुग के लक्षणों का इतना घोर प्राकट्य होने के कारण, ये सब निर्धारण करना कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है, वास्तव में इसने किया नहीं किया, बहुत मुश्किल होता है। तो खैर, यहाँ तो स्पष्ट था, इसलिए भीमसेन ने कहा कि अब शास्त्रों के अनुसार जैसे करना चाहिए वैसे करना ही चाहिए, इसको मृत्यु दंड देना ही देना चाहिए। तो अब क्या किया जाए, अर्जुन क्या करते अभी? तो श्री कृष्ण की ओर देखा, अब अर्जुन को तो श्री कृष्ण ही मालूम है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा कि आप कुछ बताइए अभी मुझे क्या करना चाहिए, धर्म संकट में पहुंच गया, एक ओर मेरी पत्नी बोलती है कि क्षमा कर दो रहने दो, दूसरी ओर भीमसेन बोल रहे हैं मार डालो, और साथ साथ में मैंने स्वयं वचन लिया था, व्रत लिया था मैंने कि अश्वत्थामा के सर को काटूंगा, उसकी मृत्यु करा दूंगा, उसको मार डालूंगा मैं। तो अभी धर्म संकट हो गया, अब क्या करना चाहिए हमें? तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम जितने भी अलग अलग विचार हैं उन सब का समन्वय करके ठीक रास्ता निकालो, जितने भी बातें हैं उस सब इन सब का पालन होना चाहिए। अरे ये कैसे संभव है? अश्वत्थामा को मारना भी चाहिए, अश्वत्थामा को क्षमा भी करना चाहिए, अभी कैसे हो जाए ये सब? दोनों विरोधात्मक कार्य हैं, क्षमा करेंगे तो मार नहीं सकते, मारेंगे तो फिर क्षमा कैसे होगी? तो फिर अर्जुन बड़े समझदार थे, बहुत बुद्धिमान थे, तो अर्जुन ने क्या किया, जल्दी से जैसे इस श्लोक में कहा गया है, अपनी तलवार उठाई और अश्वत्थामा के सर पे जो बाल था और जो मणि था वो काट दिया, सर से अलग कर दिया। अश्वत्थामा का जन्म जब हुआ था तो इस सर पे जन्म से ही एक मणि था, और उस मणि के कारण उसे ये वरदान मिला था, ये शक्ति मिली थी कि कभी भी उसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, थकावट नहीं। और इतना ही नहीं, तो मनुष्य योनि से भी निम्न जितने भी योनियां हैं उनसे ज्यादा वो शक्तिशाली होगा और उनसे कभी भी खतरा नहीं होगा उनको। तो ये अश्वत्थामा को जन्म से ही एक वरदान मिल गया था, और ये मणि था, मणि के कारण ये वरदान था। तो अब अर्जुन ने ये बाल काट दिए और मणि भी काट दिए। तो ऐसे बताया जाता है कि इस तरह से जब कोई काट देता है बाल को तो ये मृत्यु के बराबर हो जाता है, मृत्यु है भी और नहीं भी। तो इस तरह से अश्वत्थामा के बाल और मणि को सर से अलग करके एक दृष्टि से अर्जुन ने अश्वत्थामा को मार भी दिया, और दूसरे दृष्टि से वो जीवित रहा तो क्षमा भी कर दिया। इस तरह से विरोधात्मक वस्तुओं का समन्वय अर्जुन ने अपने बुद्धिमत्ता से कर दिया। तो कभी कभी ऐसे होता है जीवन में धर्म संकट, कभी विरोधात्मक दो वस्तुएं होती हैं, कोई बात होती है, और दोनों को एक साथ में करना संभव नहीं होता है, तो क्या किया जाए? बड़ा मुश्किल है, अब ये भी करना है वो भी करना है, दोनों चीजें करनी है, परंतु दोनों में विरोध है, एक करेंगे तो दूसरा नहीं कर सकते, दूसरा करेंगे तो पहला नहीं कर सकते, तो चुनना पड़ता है कि ये करेंगे कि वो करेंगे। तो इसके पीछे सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि यदि अर्जुन जैसे कोई रास्ता हमें नहीं मिले जिससे कि हम समन्वय कर सकें दोनों का, तो जो सिद्धांत श्रेष्ठ है धर्म का उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और निम्न श्रेणी का जो सिद्धांत है उसको त्याग देना चाहिए। दो धर्म के सिद्धांतों में जब टकराव होता है तो ऊपरी सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण आपको हम देंगे, ये भी महाभारत में वर्णित है कि एक बार जब अर्जुन ने अपना गांडीव बाण धनुष जो है वो युधिष्ठिर के कमरे में रखा था। अब नारद मुनि ने ऐसे प्रस्ताव रखा था कि द्रौपदी देवी के पांच पति हैं, पांच पांडव, तो हर एक पांडव द्रौपदी देवी के साथ एक एक साल रहेंगे, ऐसे उनका समझौता था आपस में। तो पहले साल में युधिष्ठिर रहेंगे, फिर दूसरे साल में भीमसेन द्रौपदी के साथ में रहेंगे, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव, वैसे पांच साल। और ये भी समझौता हुआ था कि उस एक वर्ष में जब एक भाई द्रौपदी देवी के साथ में है, जब और कोई भाई यदि उस कमरे में चले जाए तो उनको दंडित होना चाहिए, उनको 12 वर्ष बाहर जाना चाहिए, वनवास में जाना चाहिए। तो ये शर्त था। तो अब हुआ ये कि जब द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज के साथ में थी तो उस समय एक ब्राह्मण आए अर्जुन के पास कि मेरे गाय चोरी हो रहे हैं, मेरी गायों की रक्षा कीजिए। तो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है गायों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। तो बोले मैं तुरंत आता हूं, आप चिंता नहीं करना। परंतु क्या करें, गांडीव धनुष तो युधिष्ठिर महाराज के कमरे में है, तो क्या करना चाहिए, धर्म संकट। देखिए दो चीजें हैं, एक जब क्षत्रिय का धर्म का पालन करना पड़ता है गाय की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, वो तो तुरंत करना चाहिए। दूसरी ओर वचन है उनका कि मैं अंदर नहीं जा सकता, व्रत लिया है हम भाइयों ने, तो क्या करें, अभी ये काम करें कि वो काम करें। तो दोनों एक साथ में नहीं हो सकती, एक का उल्लंघन होना ही होना है। तो उन्होंने सोचा कि यहां गायों की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहां मेरा वचन मैं तोड़ूंगा तो केवल मैं दंडित हो जाऊंगा, मुझे कष्ट होगा, वो सहन करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन यहां जो अधर्म हो रहा है उसकी उसका मैंने उसको ठीक करना चाहिए, मुझे धर्म की रक्षा करनी चाहिए मुझे। तो वो चले गए अंदर और अपना धनुष लेके चले आए। फिर उन्होंने वो डाकुओं की हत्या कर दी, गायों की रक्षा की, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फिर अपना गांडीव धनुष वापस रखने आए तो युधिष्ठिर महाराज से कहा कि मैं भी जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? 12 साल के लिए जा रहा हूं। अरे क्यों जा रहे हो? बोला ऐसे ऐसे हमने वचन लिया था, आपको पता है। अरे लेकिन ये आपातकालीन परिस्थिति थी ना, ये तो कोई साधारण परिस्थिति नहीं थी। अब तुम्हारा जो गांडीव धनुष है वो यहां पे था और इसलिए तुमको लेना ही पड़ा, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है तुम्हारा, और वैसे भी तुम मेरे छोटे भाई हो, तो जब पुत्र पिता के कमरे में जाता है इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं सोचो। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, ऐसे संभव नहीं है, जो वचन लिया मैंने वो लिया, मुझे सत्य वचन ही बनना चाहिए, मुझे जाना चाहिए वनवास में। तो फिर वो चले भी गए, वनवास में चले गए। और जब बातों बातों में श्री कृष्ण ने उनको एक कहानी बताई, कहानी थी राजा एक ऋषि की, कौशिक ऋषि। अब ये कौशिक ऋषि ने व्रत लिया था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, जीवन में जो भी कुछ हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा। और एक बार हुआ ये कि वो अपने आश्रम में बैठ के ध्यान कर रहे थे और थोड़े डाकू एक आदमी का पीछा कर रहे थे, और वो आदमी भागता भागता आया और अचानक कौशिक ऋषि के आश्रम में आ गया। तो कौशिक ऋषि ध्यान वो थे, देखा उन्होंने याद में आए, वो भागते हुए चला गया। फिर डाकुओं ने, जब डाकू लोग आए, उनको पता था कि ये ऋषि कौशिक है, इन्होंने व्रत लिया है सच बोलने का, तो हम इनसे पूछेंगे कि वो आदमी कहाँ गया, तो सच सच बताएंगे ये, फिर हम आदमी को ढूंढेंगे, उसको मारेंगे, उसका सामान चोरी कर लेंगे। तो उन्होंने कौशिक ऋषि से पूछा कि वो आदमी कहाँ गया। अब कौशिक ऋषि को पता था कि ये डाकू लोग हैं, इसका पीछा कर रहे हैं, इसकी हत्या करेंगे। तो ऋषि कौशिक ने सोचा कि मुझे सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए। उन्होंने सोचा मैंने व्रत लिया है सच बोलने का, इसलिए मैं बोलूंगा सच। वो वहां गया, सही दिशा में बोल दिया, वहां गया। फिर डाकुओं ने गए, उनके वो आदमी की हत्या कर दी। और कृष्ण ने कहा, फिर ऋषि कौशिक को नरक का दर्शन करना पड़ा बाद में। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि राजा कौशिक ने सही नहीं किया, ऋषि ने, कौशिक ऋषि को झूठ बोलना चाहिए था उस समय। क्यों? क्योंकि दो सिद्धांत थे, एक किसी मासूम व्यक्ति की जान बचाना, दूसरा झूठ नहीं बोलना। तो दोनों धर्म के सिद्धांत है, लेकिन दोनों में से ज्यादा बलवान कौन सा है? दूसरे की जान बचाना। तो अपनी जान बचाने के लिए भी हम झूठ बोल सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। तो अपनी जान बचाने के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े, ऐसे छोटे में हर चीज के लिए झूठ नहीं, वो गलत है। हमारे जान खतरे में है, बहाना रख के हम झूठ बोल दिया, ऐसे ठीक नहीं है। वास्तव में जब ऐसे कोई आपातकालीन परिस्थिति होती है और जब जान वास्तव में खतरे में होती है, तब जान बचाने के लिए कोई झूठ बोलना पड़े तो बोला जा सकता है। और यहां जब किसी दूसरे आदमी की जान की बात है, तो अपने वचन को, अपने व्रत को बनाए रखने के लिए उसकी जान को खो देना, ये पाप हो गया उनके हाथ से। तो सच बोलना उनके लिए पाप हो गया, कौशिक ऋषि के लिए, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो देखिए धर्म के नियम जो है, सिद्धांत कितने जटिल और कितने मुश्किल होते हैं। गहना कर्मणो गति ही, ये कर्म सिद्धांत को और धर्म को भी समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो यहां भी देखते हैं कि दो सिद्धांत थे धर्म के, तो कौशिक ऋषि ने गलत वाला चुन लिया। साधारणतः सत्य बोलना चाहिए, परंतु ऐसे परिस्थिति में उनको, उनके लिए सही ये रहता कि वो झूठ बोलते, किसी दूसरी दिशा में बोल देते, वहां चला गया, वो डाकू लोग पीछे पीछे जाते, इसकी जान बच जाती। लेकिन अपना वचन बनाए रखने के लिए उन्होंने दूसरे की जान गंवाने दी। तो देखिए कितनी बुरी बात हो गई। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि इसकी गति अच्छी नहीं हुई कौशिक ऋषि की, हालांकि इतने तपस्वी ऋषि आदि थे वो। तो ये एक उदाहरण है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे जब दो विरोधात्मक धर्म के सिद्धांतों का समन्वय नहीं हो सकता है, जैसे कि अर्जुन ने यहां किया, तो फिर हमें चयन करना पड़ता है दोनों में से एक। जो ज्यादा बलवान है उसको लेना चाहिए, जो कम बलवान है उसको त्यागना चाहिए। और इसी तरह से समन्वय करने के लिए भी और एक महाभारत की ही कथा अब याद आ रही है। अब आपको पता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है वो 18 दिन चला। तो 17वां दिन जब युद्ध हो रहा था, इस समय तक जो कौरव सेना के जितने महान महान सब सेनापति थे, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, इनकी सब की मृत्यु हो गई थी। भीष्मदेव की मृत्यु नहीं हुई थी, परंतु पराजित होकर वो तीर की शैया पर लेट रहे थे, तो युद्ध भूमि में नहीं थे। लेकिन कर्ण थे, तो कर्ण इतने जबरदस्त युद्ध कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज को भी हरा दिया, और युधिष्ठिर महाराज के सारथी ने उनको युद्ध भूमि से बाहर ले गए तंबू में, ताकि उनका उपचार हो जाए, बहुत घाव वगैरह लग गया था उनको। तो अर्जुन ने देखा कि अरे मेरे युधिष्ठिर महाराज, मेरे बड़े भाई दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां गए वो? तो उनको पता चला कि ऐसे कर्ण के द्वारा घायल हो गए हैं। तो उनको बहुत चिंता हुई कि मेरे बड़े भाई कैसे हैं, ज्यादा उनको चोट तो नहीं पहुंची ना, तो युद्ध को आधा छोड़कर वो चले गए, युद्ध भूमि के बाहर चले गए और युधिष्ठिर महाराज के तंबू में आ गए। और वो भी कृष्ण भी साथ में थे, क्योंकि कृष्ण तो उनके सारथी थे। अब युधिष्ठिर महाराज के हृदय में इतना गुस्सा आ गया था, इतना गुस्सा कर्ण के प्रति कि कब कर्ण का पराजय होगा, अर्जुन को अर्जुन कब कर्ण की हत्या करेगा, तो ये भावना एकमात्र विचार युधिष्ठिर महाराज के मन में हो रहा था, घूम रहा था। और ठीक उसी समय अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों उनके तंबू में आए। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने क्या सोचा, गलत सोचा, सोचा कि अर्जुन ने कर्ण की हत्या कर दी, इसलिए ये और कृष्ण दोनों साथ में आके मुझे अच्छी खबर देने के लिए आए हैं, आए हैं यहाँ पर। परंतु ऐसा नहीं था, अभी तक कर्ण जीवित थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अरे अर्जुन, तो बहुत अच्छा किया तुमने कि कर्ण की हत्या कर दी, जिसकी राह मैं इतने समय से देख रहा था, इत्यादि बहुत बोलते गए। फिर अर्जुन ने कहा कि वास्तव में ऐसे नहीं है, मैं आपको ले जाऊंगा और आपके आंखों के सामने मैं कर्ण की हत्या करूंगा, परंतु अभी तक कर्ण की हत्या हुई नहीं है, मैं आपके बारे में पूछताछ करने आया हूं और मुझे आपको देखकर बहुत आनंद लगा कि आप ठीक ठाक हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज होने के बाद भी बहुत कुछ बोलने लगे, अर्जुन को बहुत डांटने लगे, इतना डांटा और फिर अंत में कहा, तुम्हारे बस की बात नहीं अर्जुन, ये गांडी बाण का क्या मूल्य है, दे दो ये गांडी बाण, भीमसेन या तो कृष्ण ये कार्य कर सकेंगे, तुम नहीं कर सकोगे, ना तुम्हारा गांडी धनुष जो है कोई काम का है। तो तुरंत अर्जुन ने अपना तलवार उठाया, तलवार बाहर निकाला, तो श्री कृष्ण, अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, युद्ध वहां चल रहा है, यहां नहीं करना है, तो यहां क्यों तलवार उठाया तुमने, तो तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए, तुम हो गए थे आनंदित क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई तो जीवित हैं, तुम्हें डर था कि कहीं वो इतने घायल न हुए हों क्योंकि मृत्यु हो जाए, परंतु ऐसा तो नहीं है, वो तो जीवित है, अभी तुम्हें आनंदित होना चाहिए, तो फिर तलवार क्यों निकाल रहे हो। फिर अर्जुन ने एक गोपनीय बात बताई, अर्जुन ने कहा कि मैंने एक गोपनीय एक गुप्त व्रत लिया है। देखिए क्षत्रियों में उस समय ऐसी प्रथा हुआ करती थी कि जब उनका शिक्षण समाप्त हो जाता था तो वो लोग एक गुप्त रीति से एक व्रत लेते थे और किसी भी हालत में उस व्रत का पालन उनको करना ही करना होता था। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने व्रत लिया था कि यदि कोई भी मुझे द्यूत क्रीड़ा में ललकारे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, मना नहीं करूंगा। ये व्रत ही कितनी समस्या का कारण हो गया आगे चलकर, है ना। इसलिए व्रत लेने के पहले बहुत सोचना चाहिए हमको। हमारे भक्त लोग भी कभी कभी उत्सव आदि के समय कार्तिक में बिंदास व्रत ले लेते हैं, हम 64 माला रोज करेंगे, हम इतना करेंगे उतना करेंगे, फिर नहीं हो पाता है। तो व्रत लेने के पहले सोचना चाहिए, लेकिन जब व्रत लिया है तो उसका पालन करना चाहिए। फिर तो अर्जुन ने क्या व्रत, तो ऐसे सारे लोग, युधिष्ठिर महाराज ये व्रत लिया था और भीमसेन ने क्या व्रत लिया था कि यदि कोई व्यक्ति भीमसेन से ऐसे कहे कि तुम मूछहीन व्यक्ति हो, मूछ उस समय क्षत्रिय के लिए मर्दान के लिए मूछ होना जरूर था, बिना मूछ के मतलब पुरुष नहीं हो, मर्द नहीं हो, तो ऐसे इस तरह से मुझे कोई कहेगा तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। तो अर्जुन ने क्या व्रत लिया था, अर्जुन ने व्रत लिया था मेरी निंदा कोई करे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गांडीव धनुष की निंदा कोई करे तो मैं उसकी मृत्यु कर उसको मार डालूंगा। तो फिर अर्जुन ने कह दिया युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कि ऐसे मैंने व्रत लिया था, अब व्रत जब लिया है तो उसका पालन करना ही है, हालांकि ये मेरे बड़े भाई हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने मेरे गांडीव का अपमान किया है, तो मुझे तो मारना ही चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। तो श्री कृष्ण सोचा अभी क्या किया जाए। हाँ, एक और ये अर्जुन जो कह रहा है सही है, व्रत लिया है, किस तरह का व्रत लिया वो अलग बात है। अभी ले लिया उसने, अभी जब लिया है तो उसका पालन करना है। तो अभी ले लिया तो पालन करना सही है, परंतु दूसरी ओर युधिष्ठिर महाराज को भी बच के रहना है। भगवान कृष्ण की ही तो इच्छा थी ना, ये सारे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाए, ताकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज वही राज सिंहासन पर बैठे, वही विश्व सम्राट बने। ये भगवान कृष्ण की ही तो योजना थी। अब यदि अर्जुन युधिष्ठिर को मार डालेंगे तो फिर क्या होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो जैसे यहां अर्जुन ने एक रास्ता निकाला, जैसे अश्वत्थामा को कैसे मार डाला, बाल और मणि निकाल के, ये भी मृत्यु के बराबर हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो एक रास्ता है कि तुम अपने व्रत का भी पालन करोगे और युधिष्ठिर महाराज भी जीवित रह जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं बताता हूं। शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि जब कोई बुजुर्ग का अपमान होता है तो बुजुर्ग का की मृत्यु के बराबर होता है। जैसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, हमारे लिए कोई सम्माननीय व्यक्ति है और उसकी हम उनकी हम निंदा करें, तो जब वो निंदा सुनेंगे अपनी इस तरह से, उनके लिए ये मृत्यु के बराबर है। तो ऐसे मान ले जाते हैं कि उनकी मृत्यु ही हो गई, क्योंकि निकृष्ट स्तर के जो व्यक्ति हैं उनसे इस तरह से निंदा बुजुर्गों को सुनना अच्छा नहीं है। इसलिए तुम ऐसे करो, तुम युधिष्ठिर महाराज की निंदा करो और युधिष्ठिर महाराज को त्वम कह के पुकारो। त्वम अर्थात तुम, भगवान या आप कह के नहीं। जब हमसे जो बड़े होते हैं उनको सम्मान हम देते हैं ना, तो क्या कहते हैं, आप कहते हैं, तुम नहीं कहते किसी को। तुम तो हमारे बस के बराबर के जो हैं या उनको कहते होंगे तुम, तो तुम कहो उनको। तो जब अर्जुन ने तुम बाकी शब्द बहुत कह दिए, लेकिन तुम कहा, जब तुम कहा तो युधिष्ठिर महाराज को जैसे इतना धक्का पहुंचा कि अर्जुन ने तुम कहा मुझसे, तुम कह के पुकारा। युधिष्ठिर महाराज तो उनको इतना धक्का लगा वो बैठ गए। अब कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब युधिष्ठिर महाराज की मृत्यु तुमने कर दी, तुम्हारे व्रत का पालन कर दिया कि तुमने एक बुजुर्ग का अपमान किया है। दोबारा अर्जुन ने तलवार निकाली तो कृष्ण ने कहा अरे ये क्या, अभी तुमने व्रत का पालन किया ना, अभी दोबारा क्यों तलवार निकाल रहे हो, क्या कारण है। तो फिर अर्जुन ने कहा मैंने जिस तरह से मेरे बड़े भाई से बात की, केवल मेरे व्रत का पालन करने के लिए मेरे सहन शक्ति के बाहर है, क्योंकि चार पांचों पांडव एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और खास करके महाराज युधिष्ठिर से भी। युधिष्ठिर महाराज कौन थे, अजात शत्रु, जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया है। तो जब अर्जुन ने इस तरह से अपमान अपने बड़े भाई का किया, इतना बुरा लगा उनको, इतना बुरा लगा कि उन्होंने सोचा कि मैं अभी जी नहीं सकता हूं, मुझे आत्महत्या ही करनी होगी, इसके अलावा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने श्री कृष्ण से ये बात कही और कहा कि इस तलवार से मैं अपने ही गर्दन को काटने वाला हूं, आत्महत्या ही मेरे लिए एक सही प्रायश्चित होगा, मेरे प्रिय बड़े भाई का अपमान करने के लिए। अब दूसरा संकट आ गया कृष्ण के सामने, अब क्या किया जाए। तो कृष्ण ने कहा, कृष्ण तो सबसे बुद्धिमान है ना, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन ऐसे किया जा सकता है, तुम आत्महत्या भी कर सकते हो और जीवित भी रह सकते हो। अब अर्जुन फिर अब ये कैसे, तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपना बड़प्पन करता है, अपने ही प्रशंसा करता है, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ये आत्महत्या के बराबर है। इसलिए अभी युधिष्ठिर महाराज के सामने जाके अपनी ही प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा करो, फिर तुम्हारे लिए आत्महत्या के बराबर हो जाएगा। तो फिर अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के सामने फिर से आए और उन्होंने कहा कि केवल मेरे लिए ये सब युद्ध आप जीतने वाले हैं, आज तक इतने बड़े बड़े योद्धा मारे गए कौरवों के पक्ष में, मैंने मारा उनको, ये मेरे गांडीव का धन का बल है। ऐसे वैसे बहुत बोलते गए, अपनी प्रशंसा करते गए। जब इतने प्रशंसा कर ली, भूरी भूरी प्रशंसा अपने ही कर ली, फिर रुक गए। तब अब युधिष्ठिर महाराज की बारी आई, वो अपने जान लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि अर्जुन से ऐसा अपमान सुना उनको सहन नहीं हुआ, वो अपने ही आत्महत्या करने वाले थे। तब कृष्ण ने दोनों अर्जुन और अर्जुन जो युधिष्ठिर महाराज को सही बात बताई कि मैं ही सूत्रधार हूँ इस लीला का। जो दोनों चीजें अर्जुन ने की, आपकी निंदा की और अपने प्रशंसा की, वो मेरे कहने पे किया, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी थी। तब युधिष्ठिर महाराज को पता चला, फिर दोनों भाइयों ने एक दूसरे का आलिंगन किया और सब कुछ ठीक ठाक हुआ। फिर युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि जाओ युद्ध भूमि में, खूब युद्ध करो, फिर वो चले गए। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं श्लोक में कैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के इशारे पे बुद्धिमत्ता से विरोधात्मक जो आदेश हैं उनका समन्वय करके दोनों को पालन कर दिया। उसी तरह से श्री कृष्ण ने भी अपनी बुद्धि चला के कैसे अर्जुन के और युधिष्ठिर महाराज दोनों की जान बचाई। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे बहुत घटनाएं होती रहती हैं, तो हमें भी ऐसे सावधानी से सोच के शास्त्रों के आधार पे कोई निर्णय लेना चाहिए। परंतु दो सीखने लायक गोष्ठी और इस घटना में ये है कि आजकल हम लोग कितने लोगों का खून करते हैं, कितनी बार आत्महत्या करते हैं, सही है कि नहीं? हमसे जो बुजुर्ग हैं उनका अपमान कितनी बार करते हैं हम, और अपनी प्रशंसा कितनी बार करते हैं। तो हम गुनहगार हैं, खून करने के, बहुत खून के करने के गुनहगार हम हैं, और आत्महत्या तो कितने बार ना रोज करते हैं कुछ न कुछ। तो देखिए, ये वैदिक सभ्यता में कितना महत्वपूर्ण था कि अन्यों का अपमान ऐसे नहीं करना चाहिए, खास करके जो हमसे बड़े हैं, सम्माननीय हैं, और अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। तो खैर, ये सब बहुत सी चीजें हैं जो सीखने मिलती हैं। तो आगे चल के क्या होगा, अभी कल हम देखने वाले हैं इस कथा में, कि जब अर्जुन ने ऐसे किया, अश्वत्थामा का सर और मणि काट दिया, फिर आगे क्या हुआ, कल भागवत प्रवचन में हम सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।